आस्था सबकी ओर देखकर बोली, हमें नहीं लगता कि हम आज शाम को वहां जा पाएंगे, क्योंकि अगर हम सम्राट यानी उस ब्लैक डेविल का चेहरा देखेंगे तो हमें सिर्फ यही याद आएगा कि उसने हमारे बेटे को अगवा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। अब चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते हैं। अब हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम गए तो हम उसकी जान ले लेंगे। ये बात आस्था पूरी तरह से बेकाबू होते हुए बोली थी, और आज तो उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि अपने बेटे को वो अब एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, क्योंकि अब आस्था बड़बड़ाते हुए अंश को लेकर सीधे वहां से अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अरमान, जो अपने कमरे की ओर जाना चाह रहा था, लेकिन अब अविनाश और अबीर साथ ही साथ ध्रुव, सुमित, अरमान को लेकर स्टडी रूम में आ गए थे। वहां उन्होंने अरमान को पूरी तरह से शांत करते हुए कहा था, आपको इस तरह से सबके सामने मर्डर नहीं करना चाहिए था भाई। आपने देखा नहीं कि सब लड़कियां किस तरह डर गई थीं? आपका असली रूप सबके सामने आ सकता था। अरमान ने केवल तिरछी नजर उठाकर सबको देखा, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक अविनाश का फोन बजने लगा। फोन उसके दादाजी का था, इसलिए वो बात करने के लिए वहां से बाहर निकल गया। तब तक ध्रुव, जिसे वंशिका को लेकर एंटीडोट के लिए जाना था, वो भी तैयार था, लेकिन तुरंत अरमान ने ध्रुव की ओर देखकर कहा था, तुमने एंटीडोट पर काम करना शुरू किया है या नहीं? ध्रुव थोड़े से हड़बड़ाते हुए बोला था, बस अरमान भाई, मैं जा रहा हूं वंशिका को लेकर। ये बोलकर ध्रुव वहां से बाहर निकल गया। अबीर सिंह राठौर बेख्याली से अरमान की ओर देख रहा था, फिर उसकी ओर देखकर बोला था, वैसे जिस तरीके से तूने आज एकदम पहले वाले अरमान की तरह राजेश का अंत किया और उसके बाद एकदम अच्छे सच्चे पति की तरह अपनी बीवी को संभाला, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी यादें चली गई हों। जैसे ही अबीर ने ये कहा, अरमान तुरंत उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मिस्टर अबीर सिंह राठौर, जब तक यहां हो अपनी सोच जितने दिनों तक बंद करके रखोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, समझे? ये बोलकर अरमान वहां से निकल गया। वहीं कबीर झुंझलाते हुए अपने बाल नोचने लगा और बड़बड़ाते हुए बोला, जब देखो धमकी देता रहता है, पता नहीं कैसा एटीट्यूड है इसका और आस्था ने इसमें क्या देख लिया है। ये बोलकर अबीर ने मुंह बना लिया। अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि इस वक्त आस्था अंश को सीने से लगाए बैठी हुई थी। आगे बढ़कर अरमान ने अंश को आस्था की गोद से ले लिया। आस्था उसे रोकने के बारे में सोचती रह गई, लेकिन तब तक अरमान ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर उसे भी अपने सीने से लगा लिया। आज अरमान को भी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद उसका अंश उससे दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अरमान को ये डर सताने लगा था और उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। तभी उसने कुछ अपने शब्दों में आस्था से कहा और अंश को फिर से उसकी गोद में देकर वहां से बाहर निकल गया। अरमान के जाने के बाद आस्था ने गहरी सांस ली और फटाफट से खुद को संभालने लगी। वो सोचने लगी कि उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। वैसे भी वो मंजिल के बेहद करीब है, बस अपने पति को ठीक करना है। उसे डाक विला में जाना ही होगा। वहां से एंटीडोट लाने के साथ साथ उसे अपना एक और जरूरी काम भी करना था। इसी सोच के साथ उसने गहरी सांस ली और फटाफट नीचे आ गई। सभी लड़कियां पहले से ही इसी बात पर डिस्कस कर रही थीं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आस्था आज तक काफी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन आज उसे मजबूती के साथ एक बार फिर आता देख सभी चौंक गए। थोड़ी देर पहले तक वो बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। तभी रौनक ने अपनी बातों में थोड़ा सा जज्बा भरते हुए कहा, आस्था, तुझे आना ही था। हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम आओगी, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाने में तो मना कर सकती हो। हमने सोचा है कि हम लोग वहां चले जाएंगे, इससे सम्राट को भी हम पर शक नहीं होगा। हम कह देंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आ पाई। अगली बार आ जाओगी, उसे यही लगेगा कि तुमने डिनर प्लान में आने की कोशिश की थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सकी। तभी आस्था तुरंत बोली, नहीं नहीं, आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। और वैसे भी मैंने नानी माँ को फोन कर दिया है, नानी माँ आने वाली हैं और वो अंश को अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं रखेंगी। और वैसे भी यहाँ रश्मि दीदी की तबीयत भी खराब है, अगर हम सब वहां डिनर के लिए जाएंगे तो रश्मि दीदी का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर सभी लड़कियों को कहीं ना कहीं आस्था की बात सही लगी। वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और आस्था को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर डाक विला में सम्राट को ये बात अच्छी तरह याद थी कि आज उसे आस्था का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करना है, लेकिन वो सोच रहा था क्योंकि राजवीर ने उसे सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी बाहर का आदमी इस तरह डाक विला में नहीं आ सकता। लेकिन अब सम्राट को कुछ ना कुछ करना ही था ताकि राजवीर को बिना पता चले वो आस्था को यहाँ बुला सके। इसीलिए उसने जल्दी ही एक प्लान बनाते हुए तुरंत राजवीर की तरफ देखा और कहा, गुरुजी, आपको मेरे एक जरूरी काम से आज के आज ही नाइजीरिया के लिए निकलना होगा। अब ये सुनकर राजवीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने सम्राट की ओर घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं नाइजीरिया क्यों जाऊंगा? वैसे भी वहां का सारा काम हम ऑलरेडी खत्म करके आ चुके हैं ना। तभी सम्राट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, बस आपको केवल आना जाना ही करना है, आज देर रात तक आप वापस भी आ जाएंगे। राजवीर सम्राट को घूरते हुए बोला, क्यों,
तू मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहता है? कहीं ना कहीं तो कुछ प्लान कर रहा है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर का इरादा सम्राट और आस्था को एक साथ रंगे हाथ पकड़वा कर अरमान के सामने लाने का था, ताकि अरमान खुद अपनी बीवी को अपने हाथों से सजा दे। इस वक्त वो सम्राट को आस्था की सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन अब सम्राट उसे यूं अचानक जाने के लिए कह रहा था तो वो थोड़ा सा चौंक गया। तभी राजवीर अपने सनकपन में बोला, बोल, जवाब दे मुझे, क्यों भेजना चाहता है तू मुझे यहाँ से? अभी इसी वक्त बोल। इससे पहले कि सम्राट कुछ जवाब देता, अचानक बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जैसे ही ये चीख पुकार की आवाज आई, वैसे ही राजवीर और सम्राट दोनों का चेहरा बदल गया। घबराकर दोनों तुरंत बाहर की ओर भागे, और जैसे ही उन्होंने देखा, सम्राट के शिकारी कुत्ते गार्डन में टहल रही सम्राट की नई बीवी पर चढ़े हुए थे, जिसे सम्राट ने खुद अपने हाथों से बनाया था। कुत्ते उसे नोचने और काटने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखते ही राजवीर की आंखें खून से लाल हो गईं। वो गुस्से में आगे बढ़ा। वहीं सम्राट की नजर पिंजरे की ओर गई, जहां उसके शिकारी कुत्ते रहा करते थे। पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, उसमें लॉक भी सही से नहीं लगा था, जिसकी वजह से शिकारी कुत्ते बाहर निकल आए थे, और राजवीर की नई बीवी को देखकर वे पूरी तरह उस पर टूट पड़े थे। जल्दी से आगे बढ़कर राजवीर ने एक कुत्ते की गर्दन पकड़ी और अपने हाथ में लिए स्क्रू ड्राइवर से उस पर वार करना शुरू कर दिया। एक एक करके राजवीर ने अपनी बनाई हुई बीवी पर चढ़ रहे कुत्तों को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। वो लगातार उन पर स्क्रू ड्राइवर से वार करता रहा और कुछ ही पलों में 6 शिकारी कुत्तों को वहीं मार डाला। अब आखिर में एक कुत्ता बचा था, जो अपने साथियों की मौत देखकर उसकी बीवी को छोड़कर चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन राजवीर ने उसे भी नहीं छोड़ा और बड़ी बेदर्दी से उसकी भी जान ले ली।
फिर जैसे ही उसने देखा कि उसकी बीवी के कपड़े काफी हद तक फट चुके हैं, उसने लाल आंखों से सभी गार्ड्स को घूर कर देखा। सभी गार्ड्स ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। तभी राजवीर आगे बढ़ा, अपनी बनाई हुई बीवी को गोद में उठाया और सीधे अंदर ले आया। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की आग भरी हुई थी। वो लगातार कुत्तों को मारते वक्त एक ही बात दोहराए जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टच करने की? तुम लोग क्या मेरी बीवी को नोच दोगे? मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाओगे? याद रखना, मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए राजवीर पूरी तरह सनकी और डरावना लग रहा था। फिलहाल उसने जल्दी से अपने हाथों से ही अपनी बीवी की ड्रेसिंग की, उसे अच्छी तरह साफ किया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए। किसी भी कुत्ते ने उसे काटा नहीं था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर काफी खरोंचे मौजूद थीं। राजवीर को अच्छी तरह पता था कि इस सिचुएशन में क्या करना है। उसने उसकी पूरी ड्रेसिंग की, दवाइयां दी और उसे आराम करने को कहा। वो दवाई उसने ऐसी दी थी जिससे वो काफी देर तक सुकून से सो सके। उसके बाद वो बाहर आया। सम्राट को अपने शिकारी कुत्तों के मरने का अफसोस तो था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसके गुरुजी ने उन्हें मारा है तो जरूर कुछ सोच समझकर ही मारा होगा। तभी राजवीर उजली आंखों से सम्राट को देखते हुए बोला, हमारी बात अधूरी रह गई थी, तुम मुझे राज नाइजीरिया क्यों भेजना चाहते हो? ये सुनकर सम्राट थोड़ा सा चौंक गया। उसे लगा था कि शायद वो कुत्तों के बारे में कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ तो वो फिर से सीधा उसी मुद्दे पर आ गया। तब सम्राट ने बेहद संभले हुए लहजे में कहा, वो इसलिए क्योंकि उस जगह पर हमारा पुराना डाक विला था, वहाँ एक और कीमती चीज रह गई है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप ही लेकर आ सकते हैं। अब ये सुनकर राजवीर और भी चौंक गया और बोला, कीमती चीज? कौन सी कीमती चीज? वहाँ क्या रह गया है?